को रोता हुआ देखा तो इसको भी रुलाई आ जाती। बलदेव प्रभु जी को कृष्ण का विरह तो है ब्रज में आने पर, उनको छोड़ करके आए हैं, किंतु यहाँ पर गोपियों का जो विरह देखा, महाभाव देखा, उसमें बलदेव प्रभु और डूब गए और कृष्ण के विरह में तन्मय हो बलदेव जी के प्रति है। यह है मधु। मधु होता है, एक होता है संसार में हम जो फंसे हुए लोग हैं, विषयों में फंसे हुए हैं, दिन रात सतयुग से चेष्टा कर रहे हैं जगत को सुखी करने के लिए और पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए। अभी देखिए कोई हरे कृष्ण राम कृष्ण बलदेव नहीं करेंगे, राधे राधे नहीं करेंगे, अभी क्या चिल्लाएंगे सब जगह, वोट दो वोट दो। कोटि जन्म जन्मांतर से वोट देते हुए आए हैं, सुखी नहीं हुए, ये लोग हमें सुखी नहीं कर सकते हैं, बैठ, ये लोग सुखी नहीं कर सकते, सुखी करेंगे बलदेव प्रभु जी कृष्ण। इसलिए संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है ये मधु है, इसको कृष्ण काट देते हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन हुआ। गोपियों के मधु का प्रेम का, गोपियों के मधु का पान करते हैं, इसलिए वो मधुसूदन है। इसलिए ये बलदेव जी सब समय कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रज में जे थप थे तभी कृष्ण का सेवन किया, ये भगवान होने पर भी कृष्ण बलदेव में कोई अंतर नहीं है। तभी बलदेव प्रभु जी नंद जसोदा गर्गाचार्य और जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितने भी बड़े लोग उनके पूज्य हैं, सब लोग उनकी सेवा करते हैं कृष्ण की। कोई गुरु रूप में सेवा करता है, कोई भैया के रूप में सेवा करता है, कोई सखा के रूप में सेवा करता है, कोई पुत्र के रूप में, कोई सखी के रूप में, किंतु है सभी सेवक, एक प्रभु ही कृष्ण ही है जो सबके सेव्य है। ये बलदेव जी सिखा देते हैं, बलदेव जी गुरु है। बलदेव जी यदि नहीं रहेंगे उनकी आराधना नहीं होगी तो हम सुखी और शांति नहीं रह सकते हैं, कृष्ण का भजन नहीं कर सकते हैं। वे क्या करते हैं, धेनुकासुर का वध करते हैं। धेनुकासुर अज्ञान है, हम सब अज्ञान में पड़े हुए हैं, हम सोचते हैं विषय वासनाओं के पाने से, वैभव पाने से, संसारिक वस्तुओं को पाने से, रुपया पैसा पाने से, स्त्री पति पाने से या पुत्र पाने से हम सुखी होंगे, किंतु यह भ्रम है। धेनुकासुर ऐसा ही अपने पुत्र कलत्र के साथ में बहुत आनंद से कंस की सेवा करता है, कृष्ण की सेवा बलदेव जी की सेवा नहीं करता। और जितना मधुर फल होता है धेनुकासुर अपने खाता है, अपने प्रभु को खिलाता है। तो जो लोग अपने वैभव, अपना धन संपत्ति विषय भोग खुद खाते हैं और अपने परिजनों को खिलाते हैं, कृष्ण और बलदेव जी को नहीं देते, बलदेव प्रभु उनका दोनों पैर पकड़ करके और ताल के वृक्ष पर दे करके उन्हें संहार करते हैं। इसलिए सब अज्ञानता है, कृष्ण ही परम सत्य है, बलदेव प्रभु जी सत्य है, कृष्ण की भक्ति सत्य है। इसलिए हमको सबको छोड़ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए, बलदेव प्रभु जी गुरु तत्व है। इसलिए धेनुकासुर का वध कर और हमें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। बलदेव प्रभु जी की और दूसरी एक लीला है, दूसरी लीला है प्रलंबासुर का वध किया था, वो वेश बदलने में चतुर है, वेशों के प्रति आकृष्ट रहता है, अत्यंत भोगी व्यक्ति है, बड़े बड़े लंबे हाथ करके कृष्ण को भोग दिया जो जाता है उसको भी समेट लेता है। इसलिए बलदेव प्रभु जी ने अभी जहां से हम आए हैं भांडीर बन, उसका विनाश किया था। बलदेव प्रभु जी हम देखते हैं द्वारका लीला में द्विविध का बंदर का वध किया, कैसे वध किया, द्विविध रामचंद्र जी का सेवक था, रामचंद्र की उसने बहुत सेवा की, किंतु गुरु से कोई मतलब नहीं। लक्ष्मण लाल जी गुरु है, गुरु जी की निंदा करता था, बस रामचंद्र जी को पहचानता था। रामचंद्र जी ने कहा, जो गुरु नहीं पहचानता और भगवान को मानता है वो राक्षस है, उनको भगवान नहीं उनसे प्रीत होते। इसलिए ये द्विविध बंदर राम की तरह तरह से सेवा करने पर भी वो पीछे से कुसंग में पड़ करके लक्ष्मण की निंदा करने के कारण वो अशुभ श्रेणी में हो गया। उसका मित्र हुए मैं दानव, दुर्योधन, कंस, जरासंध, नरकासुर, ये सब उसके बंधु बन गए। तो जो लोग गुरु को नहीं मानते भगवान को मानते हैं उनकी ऐसी दुर्गति होती है, भगवान उनकी रक्षा नहीं करते। पहले दुर्वासा ऋषि जी भी ऐसा थे, उन्होंने अम्बरीश को अंगूठा दिखलाया, उनको अभिशम्पात दिया और भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा, जे नहीं, हम नहीं तुमको क्षमा कर सकते हैं, अम्बरीश महाराज के पास में जाओ। पैर में कांटा फूटने पर, पैर में कांटा यदि गड़ जाए तो सिर से नहीं निकलता, मुख से नहीं निकलेगा, वो तो पैर से ही निकलेगा। इसलिए वैष्णव हमारे मूल है, बिना वैष्णव की, बिना गुरु के कृपा से कोई भगवान को नहीं पाता। तुमने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया है, जाओ पहले उनसे क्षमा मांगो। वे ब्रह्म योगी जो कुछ कहते थे वो सभी कुछ हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, किंतु वो ऋषि डर के मारे उन्होंने मृत्यु के भय से भाग गए। वो तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं मिला और अम्बरीश महाराज जी के सामने मृत्यु आकर के खड़ी हो गई, कुछ भी परवाह नहीं किया भगवान के बल से। अंत में उन्होंने चरण में दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश महाराज के चरणों में प्रणत हुए। भक्तों की ऐसी महिमा है, वहां पर ब्रह्म योगी राजशक्ति या कोई भी शक्ति काम नहीं करती है वैष्णवों के सामने, भक्तों के सामने। इसलिए बलदेव जी द्विविध का वध किया। यह लक्ष्मण जी ही गुरु तत्व है, उनको अपमान करके भगवान राम को प्रसन्न करना चाहता था, किंतु वो नहीं हुआ। अंत में बलदेव प्रभु जी ने अपने हल से खींचकर और मूसल से उसे संहार कर दिया। जहां जहां कृष्ण के विरोधी हुए हैं सब विरोधियों को ऐसे ही उन्होंने किया, हल से खींचकर और मूसल से मारा। आज जो लोग भगवान के प्रिय हैं उनको भक्ति प्रदान की, कृष्ण का तत्व ज्ञान दिया। इसलिए हम लोग बलदेव जी के, प्रभु जी के धाम में आए हैं। बलदेव के प्रभु यद्यपि यहां पर जन्म नहीं है, जन्म गोकुल में है, महावन में, तथापि ये गोचारण की भूमिया है, हमारे कृष्ण लीला के बाद में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने ब्रज में जहां तहां कृष्ण की स्मृति रखी। वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर, गोवर्धन में हरिदेव जी का, मथुरा में केशव देव जी का मंदिर, वृंदावन में गोविंद देव और दाऊ जी का भी इन्होंने बलदेव जी किया। वही से विग्रह को बहुत दिनों से लुप्त थी, आज से करीब अधिक से अधिक 70-75 या 100 वर्ष हुआ, यही के खीर समुद्र में, खीर सागर है वो मूर्ति, औधी हुई पड़ी हुई थी। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर और वहां पर फेंक दिया इस सागर में ब्रज में जितने प्रसिद्ध मंदिर थे, गोविंद का मंदिर तोड़वा दिया, केशव जी का मंदिर भी तोड़वा दिया, हरदेव का भी मंदिर वैसा किया। इसी तरह से जहां जहां जो था वो सबको तोड़ फोड़ दिए। पीछे से यह मूर्ति जो यहाँ पर प्रकटित है दाऊ जी में, वो यहाँ पर औंधी भी पड़ी थी। फिर सागर कोई बल्लभ संप्रदाय के कोई संत आए, स्नान करने गए और उन्होंने देखा औंधी पड़ी हुई मूर्ति, पत्थर नहीं है। तो उसने देख करके ग्रामवासियों को बुलाया और शिव विग्रह लेकर के इस मंदिर में स्थापित किया। तब से जाऊ जी ये प्रचलित हो गए। प्राचीन काल से यहाँ पर कोई हमारे जैसे रूप सनातन इत्यादि थे, दाऊ जी में उल्लेख मिलता है, तब वहाँ महाबन में उल्लेख मिलता है, बारह बनों में उल्लेख मिलता है, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है उनके भजन का। गोपियां या ब्रजवासी किस रूप में बलदेव प्रभु जी को देखते थे? नंद बाबा सब समय समझते थे ये हमारा पुत्र है, बड़ा पुत्र है बलदेव और छोटा पुत्र है कन्हैया, इस रूप में देखते थे। यशोदा मैया भी ऐसा ही देखती थी, सखा लोग अपना भाई के रूप में और सखा के रूप में उनको देखते थे, और गोपियां उनको किस रूप में देखती थी? कृष्ण जी के बड़े भैया के रूप में। इसलिए सब समय उनसे घूंघट की ओट रखती थी, और ये भी उनके जेठ के समान बहुत दूर से उनको आशीर्वाद देते थे, बहुत दूर से वो प्रणाम करती थी और बहुत दूर से उपदेश देते थे, ऐसा सुना जाता है। शास्त्रों में भी उल्लेख है, राधा कुंड में कृष्णचंद्र जी ने शंखचूड़ का वध किया, वो शंखासुर या कौन अरिष्टासुर का वध किया। इसके बाद में होली के समय में शंखचूड़ गोपियों को गाय बकरी की तरह भेड़ की तरह में हाँक करके लेकर के चला जा रहा था, राधा जी को पकड़ करके अपने कंधे पर बैठा लिया, सभी लोग विलाप करने लगी। उस समय में कृष्ण और बलदेव जी दोनों उसको मारने के लिए दौड़े, तो देखा सचमुच बड़े पराक्रमी हैं, तो डर से उनको भी छोड़ दिया, भागा। कृष्ण ने बलदेव जी को वहां पर गोपियों की रक्षा करने का भार छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चले। थोड़ी देर बाद में पकड़ लिया और उसे अपने घुटनों से उसका संहार कर दिया और उसके सिर से मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और निकाल करके बलदेव प्रभु जी को लेकर के दे दिया। बलदेव जी ने वो मणि घनिष्ठा के माध्यम से ललिता जी को भेजवाया और ललिता जी ने इसको श्रीमती राधिका को दी। यही कौन सी मणि है? ये वही मणि है जिसको कहते हैं श्यामंतक मणि। कृष्ण के वस्तक्षल पर या नारायण तत्व के शक्तिमान तत्व के वस्तक्षल पर श्री वो कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि रहती है और ये है श्यामंतक मणि। इसी यही राधा जी के गले में थी और राधा जी लेकर के इसको जमुना में कूद पड़ी थी और वो मणि के साथ में सूर्य लोक में चली गई विशाखा जी के साथ में। विशाखा जी उनकी लड़की है जम महाराज की, सूर्य की कन्या है जमुना जी, यमुना जी ही विशाखा जी हैं, इसलिए उनको लेकर के आकाश में चली गई। पीछे से राधा जी तो सत्यभामा के रूप में लौट आई, किंतु मणि उनके पास में रही सूर्य के पास में। पीछे से सत्राजीत को वो मणि मिली और सत्राजीत को मारकर और वो भालू के पास में आई और भल्लू ने अपनी लड़की की शादी की कृष्ण के साथ में, क्या उनका नाम था? जाम्बवती का, और उपहार में वो मणि दे दी। इस प्रकार से फिर कृष्ण के पास में आ गई और कृष्ण ने फिर इसको उपहार दे दिया सत्यभामा जी को। ये सत्यभामा जी राधिका जी के प्रकाश है। इन दोनों का जैसे कृष्ण और राधिका जी का परस्पर संबंध है, वैसे ही इस मणि सामंतक मणि का संबंध है कौस्तुभ मणि के साथ में। दोनों में बहुत मित्रता और सख्य भाव है। इस प्रकार से बलदेव जी सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। बलदेव जी गुरु तत्व हैं। बलदेव प्रभु जी गौर लीला में नित्यानंद प्रभु में हैं, और भी परम दयालु बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा से कोई भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं ब्रज में आया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन मिले, उनकी कृपा से हमें वृंदावन का दर्शन मिला, उन्हीं की कृपा से रूप और सनातन रूप रघुनाथ हमको मिले, इसलिए उन्हीं की कृपा है, हम लोग भी उन्हीं की कृपा प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठाकुर जी का प्रसाद शायद लग चुका है, आप लोगों की बड़ी जोर की भूख लगी होगी, परिक्रमा करते हुए आए हैं, इसलिए आप लोगों का अधिक कष्ट मैं नहीं दूंगा। आप लोग इसी से संतुष्ट होकर के प्रसाद पाइए, और विश्राम करने के बाद में 3 बजे ठीक हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ब्रह्मांड घाट, महाबल गोकुल और रमन रेती, रावल लौहबन होकर के फिर हम लोग मधुसूदन के राज्य में पहुंच जाएंगे। कंसपुरी में नहीं जाएंगे। जय जय श्री राधा मैया की,
जय
रोहिणी मैया की,
जय
गौर प्रेमानंदे। ये ब्रह्मांड घाट है, यहीं पर अपने मैया को अखिल विश्व ब्रह्मांड अपने मुख में दिखलाया था। 2 बार दिखलाया था, एक बार बचपन में दूध पिलाते समय उन्होंने जम्भाई उठाई और उन्हें विश्व ब्रह्मांड को देखा, और दूसरी बार बच्चों के साथ में जब बहुत छोटे 2.5-3 वर्ष के बच्चे थे तो दाऊ जी के साथ में सिदामा और सबके साथ में यहाँ पर खेलते खेलते यहाँ पर आए थे और मिट्टी उठा करके खा ली, तो दाऊ जी ने मना किया, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, फिर सखाओं ने भी कहा उनकी बात नहीं मानी, तो बलदेव जी ने जाकर मैया को कह दिया जैसे इसने मिट्टी खाई और मिट्टी खाता है। उस समय यशोदा जी यहाँ आई और कृष्ण को पूछा तुमने मट्टी खाई? तो नहीं मैया, हमने तो मट्टी नहीं खाई। तो नहीं खाई तो झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये बच्चे जो कहते हैं तो बच्चे इसलिए कि खेल में इनको हरा देता हूँ, ये जीत नहीं पाते इसलिए हमारे से झगड़ा करते हैं और हमारे पर असंतुष्ट हैं इसलिए नालिश है। तो दाऊ किस लिए कहता है? तो दाऊ को वो थोड़ा सा मिठाई उठाई खिला देते हैं, अपने पक्ष में कर दिया है, इसलिए वो भी उनके तरफ में हो गया है। तो देखे तुम्हारा मुख तो तू देख ले, बस ऊपर नीचे उंगली कर, उनका मुख फाड़ दिया और भीतर देखा तो मिट्टी तो नहीं देखी किंतु देखा क्या? असंख्य विश्व कोटि ब्रह्मांड ये अपने लोम कूप में रखते हैं, ऐसे अनंत कोटि सब वैसे लोग दिख पड़े। कौन दिख पड़े? गर्भदशाई इत्यादि सभी उसके अंदर में दिख पड़े, और अपने को भी उसमें देखा, और ये ब्रज को भी उसमें देखा, ब्रह्मा शिव अभिनत सबको उसमें देखा, देख करके चकित हो गई। सोचा जी ये क्या हुआ, मैं क्या देख रही हूँ, कहीं मुझे भूत तो नहीं लग गया, कहीं बच्चे को तो नहीं भूत लग गया, न जाने क्या हुआ। आंखें बंद करके फिर उन्होंने देखा, मैं कहीं सो तो नहीं रही हूँ, मैं स्वप्न में तो नहीं देख रही हूँ, किंतु उनका भगवत्ता का भान नहीं हुआ। और थोड़ी देर में ही अर्जुन को और देवकी वसुदेव को थोड़ा सा दिखला दिया, कंस को मार दिया, तो उनको भगवत्ता का ज्ञान आ गया। और यशोदा जी को हजार बार मुख में यदि ब्रह्मांड दिखलाए थे, उनको उनकी भगवत्ता का ज्ञान नहीं होता है। यही उनकी भक्ति में और उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में और यही उनके प्रेम में अंतर है। ये दिखलाना था जगत को, यशोदा जी के लिए नहीं दिखलाया, ये यशोदा जी को कुछ हो जाएगा। उन्होंने किस लिए दिखलाया? बड़े बड़े भक्तों के लिए दिखलाया, अर्जुन जैसे भक्त के लिए, नारद जैसे भक्त के लिए, ब्रह्मा जी के लिए दिखलाया। ये देखो, तुम लोग सब समय हमको भगवान कहते हो और हमारा ऐश्वर्य देखते हो, और यशोदा मैया को लाख अपना ऐश्वर्य और भगवत्ता दिखलाने पर भी यशोदा मैया को जो मैं भगवान हूँ ये नहीं आता, उनके प्रेम में कमी नहीं आती है, और तुम लोग हाथ जोड़ करके स्तौ स्तुति करने लगती हो या करने लगते हो। यशोदा जी का इतना बात्सल्य विशाल है, जिसमें लाखों लाखों वसुदेव और देवकी और अर्जुन इत्यादि सभी लोग डूब जाएंगे, उसमें था नहीं लगेगा, इतना इनका है। तब तो उन गोपियों का क्या कहो, जो गोपियों से गोपियां कृष्ण को कहती हैं, अरे हमने सुना है तू ब्रह्म है, जरा हमारा पैर दबाओ तो उस ब्रह्म को भी कुछ नहीं समझती हैं। इसलिए ब्रजवासियों में सुन करके कभी कभी दुख होता है, जब यहाँ के ब्रजवासी लोग शायद मथुरा के मथुर ब्राह्मणों का अन्न खा लेते हैं इनका, इसलिए इनको बुद्धि भी वैसे ही हो गई है। वो लोग कहते हैं जो ये कृष्ण जो था वो वसुदेव देवकी का पुत्र था, यहाँ पर केवल वो ले आए थे और इनकी गोदी में दे दिया था, यशोदा के पुत्र नहीं थे। अरे नंद बाबा से पूछो तो वो क्या कहेंगे। इसलिए जैसे भीष्म पितामह की बुद्धि हो गई थी ऐसे दुर्योधन का अन्न खाने से, शायद इन लोगों से संबंध होने से उनका अन्न खाते हैं, इसलिए यहाँ के ब्रजवासी लोगों की भी ऐसी धारणा हो गई है कि वो वसुदेव देवकी के लड़के। इसलिए कभी भी ब्रजवासी लोगों को यशोदा मैया कभी नहीं कर सकती है ये हमारा बेटा नहीं है। कभी ऐसा हुआ, कभी यशोदा जी ने कृष्ण को देखा ये घरों में चोरी करता है, तो उसको डांटते फटकारने लगी, तो कृष्ण ने कन्हैया ने कहा मैया मैं सवेरे सवेरे तो मधुबन में गैया चराने के लिए चला जाता हूँ, क्या भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोही पठायो। मधुबन में तो सवेरे सवेरे भेज दिया, कलेवा भी नहीं कराया और भेज दिया हमको, और शाम जब हुई तो गैयों के पीछे पीछे मैं यहाँ पर लौट करके आया, और यहाँ आते मुझको मैं थक जाता हूँ सो जाता हूँ, तो मैं कब लोगों के घर में मक्खन मैंने चुराया। मैया मालूम होता है एक बात, मैं तुम्हारा बेटा अपना होता तो शायद ऐसा नहीं कहती, मालूम होता है कि मैं दूसरे का जा उत्पन्न हुआ बेटा हूँ और तुमने हमको पाल पोषण किया। यशोदा जी के आंखों में आंसू आ गए और झट छाती से लगा ले कि बेटा नहीं, नहीं तूने मक्खन नहीं खाया। तब कृष्ण के भी आंखों में आंसू, वो कहते हैं मैंने ही मैया मैंने ही मक्खन खाया, और कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही मक्खन खाया, और यशोदा जी कहती हैं नहीं बेटा तूने नहीं खाया। दोनों में सुलह हो गई। एक दिन कृष्ण यहीं से रोते 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 घर में गए और आंगन में लोटपोट करने लगे। भैया ने कहा जब बेटा क्या हो गया, क्या हो गया वो बतला नहीं रहे, ये क्या हो गया। उस समय में जोर जबरदस्ती करके अपनी गोदी में उन्होंने ले लिया और वो सरक करके नीचे गिरने लगे। अरे बेटा बतला कुछ भी तो क्या बात हुई, तो मैं तो तेरा बेटा नहीं हूँ, तो कैसे नहीं बेटा है। तो लोग कहते हैं, सखा लोग ताली बजा करके हमारे और हंसते हैं और दिल्ली उड़ाते हैं, तू यशोदा का बेटा नहीं। अरे
जसोदा मैया गोरी और नंदा बाबा गोरे, तू काला कहां बीच से टपक पड़ा? इसलिए तू उनका बेटा नहीं है, तुम तो किसी दूसरे का बेटा होगा और उन्होंने इमली के खोड़े में गड्ढे में तुमको उत्पन्न होते ही रख दिया। और इसके बाद में तू रो रहा था तो दया करके नंद बाबा ने उठा लिया और यशोदा को दे दिया, तुम उनका पुत्र नहीं, कैसे हो सकता है संभव? तब यशोदा जी ला कहते हुए लाड़ प्यार करते हुए शपथ दे करके कहती है, मैं शालक राम की शपथ करती तुमको सबसे अधिक प्यार करती हूँ, इसलिए मेरी तुम्हारे ऊपर मिस्टी लगा करके मैं शपथ खा करके कहते हूँ बार बार, तू हमारा ही बेटा है, तुम दूसरे का बेटा नहीं। तब फिर जा करके वो माने। ऐसी ऐसी सब लीलाएं यहाँ ब्रह्मांड घाट में हुई। भक्त लोग भगवान मुख में या अपने लोमकुट में लाख ब्रह्मांड रखे, लाख ऐश्वर्य दिखलाए, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण भी हो जाए, उनके साथ में सबके साथ में नाचे, या सखाओं के पास में सबके साथ में एक एक कृष्ण हो जाए, गिरिराज गोवर्धन को धारण कर ले, काली हृदय में डूब जाए और काली को भी नथ ले, ऐसे आश्चर्य युक्त करने पर भी कृष्ण छोटे से सुकुमार पुत्र हैं, नारायण उनकी रक्षा करते हैं, नंद बाबा यशोदा जी ये कहते हैं हमारे लाला को नारायण कृपा करते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं ना, इसलिए प्रसन्न होकर के रक्षा करते हैं, इसलिए भगवत्ता का भाव उनमें नहीं आता। ऐसे ये ब्रह्मांड घाट में बहुत सी लीलाएं हैं, अभी उनका आचमन करके और सीधे गाड़ी में बैठ जाइए।
इतना हवा आता है ना,
ये जमलार्जुन भंजन का पारसी में स्थान है।
ये बच्चे सर
यशोदा जी, कृष्ण ने मक्खन चुराया था आप लोग जानते हैं, और यशोदा जी उनका पीछा किया और उस परब्रह्म से भी अधिक तीव्र गति से दौड़ करके उनके पीछे से पकड़ लिया। कृष्ण रोने लगे, जे मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार। कहां ब्रह्मा जम इत्यादि सब थर थर कांपते हैं, जिनसे इनका नाम लेने पर बहुत सागर आदमी पार हो जाता है, और यशोदा मैया की लठिया देख करके ही आंखों से आंसू की धारा में गिरने लगी। कज्जल मिश्रित गंगा और जमुना बहने लग गई, सिसकने लगे जोर से। उसमें यशोदा जी ने लठिया तो फेंक दिया, इनका तुम्हें बांध करके रख दू। जब बांधने लगी तो अपने घर की रस्सी, ब्रज की रस्सी सब कुछ समाप्त हो गई, किंतु दो अंगुल कम पड़ी। वो दो अंगुल कम क्या था, भगवान की कृपा और भक्तों का साधना का परिश्रम। जब देखा जिस सवेरे से वो बांधते बांधते थक गई, दोपहर हो गया, जब नहीं बांध सकी तो गोपियां ताली बजाने लगी, उनकी आंखें लाल हो आईं, कुछ भीतर में रुआसा भाव आ गया। तो कृष्ण कृपयाशीत संबंध ने उनका परिश्रम दे करके और झट वो कृपा से अपने आप एक डोरी से ही बंध गए। बांध करके फिर दधि मंथन करने चली गई, और यहीं पर यशोदा जी का विशाल भवन था, लाखों दास दासियां उसमें काम करती थी, पासी मुधर में उनका गोकुल में के पासी में इधर में उनकी गायें रहती थी, 900,000 नंद बाबा की और न जाने कितने कितने की सभी गायें उधर में रहती थी। बस कृष्ण जी बंधे हुए और सखाओं को लेकर चले आए। जब वहां से निकले, यहाँ पर जमलाजू दो पेड़ थे, उस पेड़ में रस्सी लगा दी, अपने आप उधर चले गए, ओखल उधर में रह गई, पेड़ से कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ, ओखल से भी रस्सी से भी नहीं हुआ जो कृष्ण को बंधे थी, कृष्ण का पैर हाथ उधर में चला गया था आगे, किंतु उसे रस्सी का स्पर्श और रस्सी से स्पर्श है ओखल में, और उस ओखल से दोनों का स्पर्श होने से ही बस उनकी करुणा शक्ति संचयित होकर के दोनों गिर पड़े और अपने दिव्य शरीर से उस पेड़ से निकले और कृष्ण की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और लेकर के चले गए वहां से। केवल उनका भववंदन ही नहीं दूर हुआ, प्रेमा भक्ति लाभ करके गोलोक वृंदावन में वो लोग पहुंचे और उनके स्निग्ध कंठ और मधु कंठ दोनों परिकर होकर के उनके लीलाओं का वहां पर गुणगान करते हैं। ऐसी कृष्ण की कृपा
साक्षात नहीं होने पर भी उनके संबंध से कोई भी संबंधित हो, उनके संबंध से संबंधित हो, उनके संबंध से और कोई संबंधित हो, उस परंपरा में कोई आ जाए, तो कृष्ण उस पर करुणा की वर्षा कर देते हैं। धन संपत्ति की तो बात क्या, भक्त लोग तो उनसे धन संपत्ति चाहते नहीं, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वैकुंठ की गति नहीं, मथुरा द्वारकेश की भी गति नहीं, वो उनसे क्या चाहते हैं, ब्रज की, बस एकमात्र करुणा चाहते हैं, वो भी राधा जी की करुणा चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों को उखाड़ दिया। नंद बाबा आए, सखाओं ने चेष्टा की बंधन खोलने के लिए, किंतु सखा लोग नहीं खोल सके। सखा लोग कैसे खोल सकते हैं, सखर से वात्सल्य अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए बस वात्सल्य रस की गांठ दी हुई सखा लोग नहीं खोल सकते, बलदेव जी भी नहीं खोल सके, मधुमंगल नहीं खोल सका, कृष्ण अपने भी खोलने की चेष्टा की, वात्सल्य रस का रस्सी वो भी नहीं खोल सकते, पीछे वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा, विश्व ब्रह्मांड में उनका हाथ पहुंच जाएगा, किंतु यशोदा जी के गांठ तक उनका हाथ नहीं पहुंचेगा, उनके वात्सल्य रस का अवदान नहीं दे सकते। जब नहीं खोल सके, नंद बाबा आया, देखा, अरे इस बच्चे को बांध दिया, यदि मर जाता तो पेड़ से दब जाता तो क्या होता, बस गोदी में लेकर के पुचकारने लगा कृष्ण, और रोने लग गए, आंख में और आंसू जो सूख गए थे वो फिर से आ गए। उस समय में नंद बाबा जी धीरे धीरे खोल दिया, खोल करके पॉकेट से एक लड्डू लेकर के दे दिया। कृष्ण शिशक रहे थे, अभी पूछा किसने बांधा, तो कृष्ण बतला नहीं रहे, पूछाए किसने बांधा, बतलाओ तो हम उसे देखेंगे, दंड देंगे। तो इधर उधर देखने लगे, कहीं मैया ना देख ले जो मैं कह रहा हूँ जो मैया ने बांधा। अंत में देखे बहुत दूर खड़ी हुई, सब पका रही है यशोदा जी, उन्होंने कहा किसने बांधा, आप मैया ने, अच्छा खोला किसने, लड्डू किसने दिया, अब तू नहीं जाएगा तो, तू तो मैया के पास में रहता है, बाबा के पास में आता ही नहीं है, अब देखो जो प्यार तुमको कौन करता है, मैया करती है कि बाबा। फिर वहां से लेकर के स्नान करने के लिए यहाँ पर आए, ब्रह्मांड घाट में स्नान किया, यहाँ पास में स्नान करके करते करते तो शाम हो गई, घर लौटे, माखन मिश्री उनको खिलाया, दूध खिलाया, और इसके बाद में आज यशोदा जी को आने नहीं देंगे, यशोदा जी एकदम डर गई, उनके आंसू भी सूख गए। जब शाम रात होने को आई, अभी तक घर में रसोई नहीं बना, किसी ने खाया नहीं, उस समय उपानंद जी की पत्नी और रोहिणी मैया और सब बलदेव जी को लेकर के वहाँ आए, बलदेव जी को इशारा किए उसको पकड़ लाओ, तो गए, तब कृष्ण को ने ऐसा झटका दिया, छिटकाया कि बहुत दूर जा करके गिर पड़े। रोहिणी मैया ने कहा जैसे तू किसके पास में रहेगा, तो बाबा के पास, मैया के पास नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, मक्खन मिश्री खाएंगे, बाबा खिलाएगा, सोएगा कहाँ, बाबा के पास, खेलेगा किससे, दाऊ जी के पास, तू नहीं जाएगा, आ तेरी मैया यदि जैस की आराम हो जाए तो बस रोने लग गए, मैया 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 हाथ बढ़ा दिया, बस रोहिणी जी ने गोदी में ले लिया और लेकर के कृष्ण की डकरती हुई मैया के गोदी में बैठा दिया कृष्ण, और फक फक करके वो रोने लगी, कृष्ण रोने लगे, नंद बाबा रोने लगे, सखा लोग रोने लगे, जो था वहां पर सभी लोग रोने, बस हम ही लोग केवल नहीं रोए। क्यों नहीं रोए, क्योंकि ऐसा प्रेम नहीं, हम लोग का हृदय कलुषित है, इसलिए जिनका है हृदय वैसा वो भी रोने लग सकता है, किंतु हम लोग का भी नीरस है, इस नीरसता में सरसता बरसाने के लिए हम लोग आए हैं कि यहाँ की धूलि को स्पर्श करके और यहाँ की लीला को स्मरण करके हमारा हृदय भी सरस हो जाए, अपराध दूर हो जाए, इसलिए हम आए, इसलिए यहाँ की धूलि अपने सिर पर अपने अंगों पर धारण करके इसे प्रार्थना कीजिए। ये कृष्ण से भी बलवती यहाँ की भूमि है, कृष्ण तो दिखाई नहीं पड़ते, ये तो धूलि तो दिखाई पड़ती है, कृष्ण को हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख रहे धूलि को तो देख ही सकते हैं, इसलिए धूलि को हम लोग प्रणाम करें और एक धूलि को लेकर के सिर पर रखें, हम लोगों का कल्याण हो जाए। बोलो वृंदावन भूमि गोकुल में, महावन गोकुल में, और विश्वभानु महाराज जी अपनी ससुराल में
रावल
में आए। रावल कहते हैं बड़े बड़े
जमींदार
रईसों को, जमींदारों को, ये बड़े रईसों में से थे। नंद बाबा से भी बड़े रईस माने जाते। तो यहीं पर जमुना जी रहती थी। जमुना वाज फ्लोइंग एट दैट टाइम हियर एंड विश्वभानु महाराज जी यूज्ड टू टेक बाथ हियर। यहीं पर वो स्नान करते थे। एक दिन यहीं पर पासी में स्नान कर रहे थे, कमल के फूल के ऊपर में राधिका जी, छोटी सी बालिका, अपने पैरों की अंगूठे अपने मुख में देकर के चूस रही और पैर को ऐसे ऐसे कर रही थी। नंद देखा विश्वभानु महाराज ने और उसको गोदी में से कमल के फूलों पर से उठा दिया और गोदी में लेकर के आए और राजभवन में अपने पत्नी कृतिका सुंदरी जी को उन्होंने दे दिया गोदी। कैसे अब से ये हमारा बेटा है श्रीराम और बेटी हमारी हुई ये श्रीमती राधिका। यहीं पर नंद बाबा के यहाँ नारद जी आए और कृष्ण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ने सोचा जी उनकी लक्ष्मी जी भी, राधा जी भी, उनकी शक्ति भी यहीं पर कहीं होंगी। तो खोजते 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 यहाँ पर आए और विश्वभानु महाराज से कहा जी आपको कोई संतान हुई है? तो जी हाँ हमको संतान है। तो कौन? तो श्रीराम जी को दिखलाया। देख करके प्रसन्न हुए, कहा जैसे वो लड़की कोई होगी। तो जी और कोई संतान है? तो उन्हें जहाँ एक और मुझको लड़की हुई है। लड़की कहाँ है? तो लड़की को दिखलाने गए, अभी छोटी सी बच्ची, अभी 7-8 दिन की बच्ची। देख करके नारद जी अत्यंत मुग्ध हो गए। मुग्ध हो करके और उनका अर्चन पूजन कुछ करना चाहा, प्रस्ताव करना चाहा, इसलिए उनको कहा जिसे जरा पानी और अर्चक, रोली,
दूब
की घास, दही, चंदन ये सब ले आए, मैं इसका हाथ देखूंगा और इसका शुभाशुभ फल दिखलाऊंगा। ये करके उनको तो विदा कर दिया। वो लाने गए, इतने में 10-15 मिनट आध घंटा हो गया और इतने में उन्होंने स्तव स्तुति आरंभ की। इतने में ललिता जी प्रकट होकर के देखो देखो, जब देखने लगे तो एकदम गूंगे बन गए, उनकी महिमा को कुछ वर्णन नहीं कर सके। ललिता जी ने अरे अभी अभी अंतर ध्यान हो जाएंगी। जब होश हुआ तब कुछ स्तव स्तुति आरंभ किया और फिर थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गई। कुछ बातचीत नहीं हुई, कुछ ले दे नहीं दे सके। फिर से वो नारद कुंड में गए, गोवर्धन के पास में, वहां पर तपस्या की, फिर इनको उन्होंने दर्शन दिए थे। ये राधिका जी का जन्म स्थान माना जाता है। कहीं यहीं पर उनके गर्भ से भी पैदा होने का भी उल्लेख मिलता है, कहीं बरसाने में भी उनका जन्म का उल्लेख मिलता है। ये सभी बातें सत्य है युग के अनुसार, कल्प के भेद से। तो यहीं पर राधा जी का जन्म स्थान, यहीं पर बाल्य लीलाएं हुई। यहाँ पर कम से अधिक 1.5-2 वर्ष थी। कृष्ण यदि 3.5 वर्ष की उम्र में वहां से चले गए तो ये कितने वर्ष में गई होंगी? कृष्ण से छोटी है ना, थोड़ी सी
15 दिन।
तो 15 दिन छोटी थी। तो इस तरह से वो भी चली गई राल में और कृष्ण चंद्र चले गए अपने पिताजी के साथ में छठी कराल। आप लोग चलिए दर्शन करके और फिर जल्दी से आ जाएंगे, ये शाम होने के पहले हम लोग मथुरा में पहुंच जाए। गो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद कानेश्वरी, ऐसी श्रीमती राधिका जी है जिनके चरणों में हम आए हैं। अर्थात जितनी भी देवियां हैं सब देवियों की भी ये देवी हैं। क्षमा की तो मूर्ति हैं ये। प्रमोद कानेश्वरी, कानन माने प्रमोद कानन क्या है? वृंदावन, राधा कुंड इत्यादि सब उसकी ये ईश्वरी है, इसलिए वृंदावनेश्वरी ये है। रमेश्वरी, रमा की ईश्वरी, रमा माने लक्ष्मी, कोटि कोटि लक्ष्मी मिलकर के एक गोपी और कोटि कोटि गोपियां सब राधा जी में समाहित हैं। इसलिए समस्त ईश्वरियों के भी लक्ष्मी, लक्ष्मियों की भी लक्ष्मी है। ऐसी श्रीमती राधिका जी के चरण कमलों में आए हैं, बड़ी ये दयालु हैं, यदि कोई इनसे कुछ मांगता है तो सहज ही दे देती है। इसलिए हम लोग इनके चरणों में इनकी पाल्यदासी होने का की प्रार्थना करके तो फिर यहाँ से अपनी गाड़ी में हम लोग चले। गौर प्रमाण।